अगले कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय का पर प्रकाश डालिए या शमशेर बहादुर सिंह के भाषा शैली का वर्णन कीजिए। उत्तर, छायावादोत्तर कवियों द्वारा रचित काव्यों में तकनीकी की दृष्टि से शमशेर बहादुर सिंह की कविता सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सर्वोच्च एवं तथा सुव्यवस्थित है। जैसे कि वे स्वयं कहते हैं, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 3 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून में हुआ था। इन्होंने 1933 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने कला विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त की, किंतु वे कला की अपेक्षा काव्य जगत को अपनी जीवनधारा बनाई। इन्होंने दूसरा सप्तक के अतिरिक्त कुछ और कविताएं प्लाट का मोर्चा, द्वाप, कामिनी, हुक्सु और पी कहाँ आदि की रचना की। आपने कहानी, निबंध, अनुवाद आदि का भी कार्य किया। संप्रति दिल्ली में रहकर हिंदू उर्दू कोश निर्माण की योजना में संलग्न रहे। श्री शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में नई कविता के नायक कवि वृंदों में एक हैं। उन्होंने नई कविता को प्रगतिवादी आयाम दिए। आपने सर्वहारा वर्ग को नया स्वर प्रदान किया। चूंकि आप स्वयं कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अतः उनकी रचनाओं में भी जनवादी भावनाओं का पृष्ठपटन खुलकर हुआ है। दूसरा तार सप्तक की भूमिका में आपकी विशेष चर्चा हुई है। श्री शमशेर बहादुर सिंह यथार्थवादी कवि हैं। आप सत्य को शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। मनुष्य कुछ नहीं देता, बात ही बोलता है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही सत्य का मुख, झूठ की आंखें क्या देखें। यथार्थ में सत्य ही सत्य का रुख होता है। सत्य ही जन समाज को सुखी बनाकर सुख शांति एवं जनमंगल का प्रसार प्रचार करता है। सत्य का रुख समय का रुख है। अभय जनता को सत्य ही सुख है। जहां सत्य के स्थान पर केवल बुद्धिवाद या भौतिकता है, यहाँ दैन्य का दानव और कंगाली का आलम है। यहाँ भीषणता और क्रूरता ही है। दैत्य दानव काल भीषण क्रूर स्थिति कंगाल बुद्धि घर मजूर। आज के विश्व की सबसे बड़ी समस्या है समाज में सच्चे इंसान को प्राप्त करना। आज के समाज में सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु कोई है तो सच्चा इंसान का मिलना। वे लिखते हैं, मुझको मिलते हैं प्रदीक औरन कलाकार बहुत, लेकिन इंसान के दर्शन है मुहाल। कविवर श्री शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के रीढ़ हैं। उन्होंने प्रत्यक्षवाद, यथार्थवाद, साम्यवाद, जनवाद, सरहारावाद, इंसानवाद, संरचनावाद, विकासवाद का पोषण बड़े ही मार्मिक एवं चुटिले शब्दों में किया। वे गंतव्य की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करने का संदेश देते हैं। जैसे, दुख करता सजल झलमल, आँख मलता पूर्व स्रोत, पुनः पुनः जगती ज्योत। श्री शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के तकनीकी सम्राट हैं। जैसा कि डॉक्टर रामदास मिश्र कहते हैं, शमशेर बहादुर बहुत ही सूक्ष्म सौंदर्य बोध के कवि माने जाते हैं। उनमें अजरा पाउंड की तकनीकी सौंदर्य का बड़ा प्रभाव है। श्री शमशेर बहादुर सिंह जी का कला पक्ष निस्संदेह रूप से अन्य नई कविता के कवियों से अधिक प्रभावशाली है। उनकी शिल्प कला अद्वितीय है। उनकी भाषा मूलतः आमजनों की भाषा है। वे हिंदी के खड़ी बोली के अतिरिक्त संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ हुई अंग्रेजी फारसी शब्दों का भी प्रयोग यथाकदा करते हैं। श्री शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में एक उत्साह है, एक उत्तेजना है, लक्षणा है, व्यंजना है, अभिव्यंजना है। उदाहरण के लिए, यह समंदर की पछाड़ तोड़ती है हाड़ तट का, अति कठोर पहाड़, पी गया हूँ दृश्य वर्षा का, हर्ष बादल का हृदय में भरकर हुआ हूँ हल्का। उपयुक्त कविता के पंक्ति में अनेक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जो मूलतः गद्य में प्रयोग होता है या अकविता के शब्द माने जाते हैं, किंतु श्री सिंह ने पछाड़, हाड़, पहाड़, बादल, वर्षा आदि शब्दों के माध्यम से माधुरिता एवं लयात्मकता का सफल प्रयोग किया है। श्री शमशेर बहादुर सिंह का अपनी विशेष कुशलता है। शमशेर बहादुर सिंह मूल रूप से यथार्थवादी एवं इंसानवादी कवि हैं, अतः इनकी कविता व्यंग्यात्मक होते हुए सत्यपरक है। उनकी शैली उपदेशात्मक न होकर कृत्यात्मक है, जैसे सत्य का रंग क्या पूछो, एक संग एक जनता का दुख है। यह यथार्थवादी शैली का एक बेबाक उदाहरण है। श्री सिंह की समस्त कविताएं मूलतः मुक्तक छंद में लिखी गई हैं, किंतु उनमें लय सुर है, ताल है, माधुर्य है, ओज है। श्री सिंह ने अनुप्रास, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संबोधन, प्रतीक, प्रत्येक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। नई कविता के अन्य कवियों की भांति श्री सिंह ने श्रृंगार, करुण, शांत रस के अतिरिक्त कहीं कहीं अद्भुत एवं वीर रस का भी प्रयोग किया है। श्री शमशेर बहादुर सिंह निसंदेह रूप से नई कविता के मूर्धन्य कलात्मक कवि हैं। उनकी शिल्प कला सर्वश्रेष्ठ है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी शिल्प कला एवं तकनीकी एजरा पाउंड से प्रभावित है। वे आधुनिक काव्य साहित्य के अमूल्य निधि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कविता का शीर्षक है बात बोलेगी। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखें, सत्य का रुख समय का रुख है, अब है जनता को सत्य हो सुख है, सत्य ही सुख दैन्य दानव काल भीषण क्रूर, स्थिति कंगाल वृद्ध घर मजूर, सत्य का क्या रंग पूछो, एक संग एक जनता का दुख, एक हवा में उड़ती पताकाएं अनेक, दैन्य दानव क्रूर स्थिति कंगाल बुद्धि मजूर घर घर, एक जनता का अमरवर एकता का स्वर अन्यथा स्वतंत्र इति। कविता की शीर्षक एवं व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता बात बोलेगी कविवर श्री शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित है, जिनके अंतर्गत कवि की आत्मा का क्रांतिस्वर दिखाई देता है। श्री शमशेर बहादुर सिंह का विचार है कि सत्य ही सर्वोच्च शक्ति है। जहाँ सत्य नहीं वही दानता है, क्रूरता है, कंगाली है, अज्ञानता है, दुख है, दरिद्रता है, अशांति है। जो सत्य है वह सत्य है, इसे खुरच कर मिटाया नहीं जा सकता। बात स्वयं बताएगी सत्य क्या है, सत्य का रंग क्या है, सत्य का प्रभाव क्या है। श्री शमशेर बहादुर सिंह जी का कथन है कि बात स्वयं बताएगी सत्य क्या है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, बात की अपनी बड़ी महत्ता है। ये यदि सत्य है तो इसका सुख ही अपरंपार है। यह अपना सत्य सुख स्वयं प्रकट करती है, साथ ही झूठ का स्वरूप भी प्रस्तुत करती है। झूठ की आंखें सदा झूठ ही बोल देखती हैं। कवि प्रश्न करता है कि वह क्या देखे, सत्य का सुख या झूठ की आंखें। जो सत्य है सत्य की धारा है, वही समय की धारा बनती है। जो व्यक्ति भय से रहित है उसे सत्य का सुख प्राप्त होता है। सत्य का सुख आत्म शांति का प्रतीक है। कवि भाव परिवर्तित कर कहता है दैत्य या दानव जो काल के समान है, जिसमें भीषण क्रूरता व्याप्त है, जिसकी स्थिति कंगाली से परिपूर्ण है, जिसकी बुद्धि मात्र घर की मजदूर के समान हो, सभी को सत्य परिवर्तित कर सकता है, सब में शांति का सुख ला सकता है। सत्य का वर्तमान रंग क्या है, तो आज का सत्य यही दिखलाई पड़ेगा कि सभी दुखी हैं, सबका दुख भी एक है, सबकी पीड़ा एक है। यद्यपि जगत में अनेकानेक विचारधाराएं फैली हुई हैं, आज की अवस्था व्यवस्था सब कुछ अस्त व्यस्त त्रस्त है। सर्वत्र दैत्य दानव का साम्राज्य है। समाज की स्थिति अत्यंत ही क्रूरता एवं राक्षसत्व से को स्पर्श कर रही है। बुद्धि घर मजदूर की भांति कुंद हो चुकी है। जनशक्ति के पास मात्र एक शक्ति है, वह शक्ति है एकता का, सच्ची एकता का। तभी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है, अन्यथा स्वतंत्रता का रक्षा संभव नहीं है। प्रस्तुत कविता बात बोलेगी के अंतर्गत कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह सत्य की महत्ता को दर्शाए हैं। वे वर्तमान की स्थिति परिस्थिति अवस्था व्यवस्था देखकर अत्यंत दुखी हैं। सर्वत्र दैत्य और झूठ का साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं। करने का कोई मार्ग है तो वह मात्र सच्ची एकता है। इसके अलावा सर्वत्र अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी का राज्य फैलता रहेगा। यदि इन सब पर विजय प्राप्त करना है तो कोई मार्ग है तो वह सच्ची एकता है। यदि हम में सत्य का संचार हो जाए तो संपूर्ण संकट अपने आप समाप्त हो जाएगा, अन्यथा हमारी रक्षा संभव नहीं है और हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। कविता की भाषा सरल सुबोध है, आम जीवन की बोलचाल की हिंदी खड़ी बोली है। भाषा में सरलता एवं माधुर्य है, किंतु भाव गंभीर है। कविता की शैली विवेचनात्मक है, कवि स्वयं विवेचन करता है। सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखें, झूठ ही समस्त तनाव का कारण है। कविता का रस शांत है, कविता में अनुप्रास और रूपक तथा उत्प्रेक्षा का समावेश है। तकनीक सशक्त है, छंद मुक्तक है, गुण माधुर्य किंतु अभिव्यंजना से परिपूर्ण है। इनकी अगली कविता का शीर्षक है सागर तट। यह समंदर की पछाड़ तोड़ती है हाड़, तट का अति कठोर पहाड़। पी गया हूँ दृश्य वर्षा का, हर्ष बादल का, हृदय में भर कर हुआ हूँ हवा सा हल्का। धुन रही थी सर व्यर्थ व्याकुल मत लहरें, वही आकर जहाँ था मैं। समय के आघात से पीली खड़ी दीवारें जिस तरह गहरे एक के बाद एक, सहसा चांदनी की उंगलियां चंचल क्रोशिये से बुन रही थी चप्पल। फेन झालर बेल मानो पंक्तियों में टूटती गिरती चांदनी में लौटती लहरें, बिजलियों से कौंधती लहरें, मछलियों से बिछल पड़ती तड़पती लहरें। बारंबार स्वप्न में रौधी हुई सी विकल सी सकता पुतलियों सी मोद लेती आंख। यह समंदर की पछाड़ तोड़ती है हाथ टट का अति कठोर पहाड़। यह समंदर की पहाड़। कविता की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत कविता सागर तट कविवर श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता सागर तट के अंतर्गत कवि श्री शमशेर सिंह ने सागर तट का सजीव एवं यथार्थवादी चित्रण किए हैं। कवि के अनुसार सागर तट पर प्रतिपल प्रतिक्षण नवीन दृश्य प्रस्तुत करता है। कविवर श्री शमशेर बहादुर सिंह का कथन है कि सागर की लहरें इतनी तीव्र एवं प्रभावशाली होती हैं कि वह अपने किनारे उपस्थित विशाल कठोर पर्वतों की चट्टानों को चूर चूर कर देती हैं। सागर जो विशाल जल भंडार से युक्त है मानो स्वयं वर्षा के समस्त जल को पी गया है। बादल जब पूर्णतः हर्षित होता है तो जल की वर्षा करता है। जिसके हृदय में जल ही जल है, जिसके खाली होने पर वह हवा सा हल्का हो जाता है। सागर की लहरें बार बार चट्टानों से टकराकर अपनी सर धुन रही हैं। ये व्याकुल लहरें जो हर पल असमित हो पर्वतों से टकराती हैं, जिसे कवि बड़े ही निमग्न हो मौन खड़ा होकर देखता है। कवि का विचार है कि ये विशाल पर्वत की चट्टाने जो सैकड़ों हजारों वर्षों से एक ही मुद्रा में खड़े होने के कारण पीली सी हो गई हैं, वहाँ एक के बाद एक लहरें आकर टकराती हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चांदी के क्रोशिये से सागर के फेन को तार धागा बनाकर बुनती है। जब जब सागर की लहरें चट्टानों से टकराती हैं तो टकराने के बाद एक के बाद एक पंक्तियों का रूप ग्रहण कर पुनः सागर की ओर लौट पड़ती हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली चमक रही हो। पुनः सागर में ये लहरें मछलियों की भांति थिरकती उछलती तड़पड़ाती दिखलाई पड़ती हैं। जैसे ही सागर की लहरें पर्वतीय चट्टानों से टकराती हैं तो उसके बालू के कण बिखर कर फैल जाती हैं। यह कब और कैसे हो जाता है वह पूर्णतः स्वप्निल प्रतीत होता है। अंततः कवि पुनः कहता है कि सागर तट के किनारे उपस्थित पर्वतों के चट्टानों से टकराकर पर्वत टूट टूट गिरती हैं, जो उसकी नियति बन चुकी है। प्रस्तुत कविता सागर तट कविता का यथार्थवादी प्रकृति चित्रण है। कवि के विचार से सागर पर्वत बादल और बालू का विशेष संबंध है। सागर की रचना आकाश के बादल की वर्षा से होती है। सागर जब पर्वत से टकराती है तो चांदनी सा रजकण बालू का रूप ग्रहण कर लेती है। सागर के लहरों में जो थिरकन उच्छासन नृत्य उठती है वह रहस्यों से भरा पूरा होता है। पर्वत सागर की टकराहट निसंदेह एक नया स्वरूप प्रस्तुत करता है। कविता का भाषा शुद्ध हिंदी बोली के साथ संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सुबोध है। कविता की शैली वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक है। कविता में अद्भुत शांतरस का प्रयोग किया गया है, साथ ही उत्प्रेक्षा उपमा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्य गुण में व्यंजना और अभिव्यंजना का प्रयोग हुआ है। इनकी अगली कविता का शीर्षक है एक पीली शाम। एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता शांत, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष्ण म्लान हरा सा, कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं वासना डूबी शिथिल पल में, स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू शांत तारक सा अतल में। इसकी व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत कविता एक पीली शाम कविवर श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, जिसके अंतर्गत कवि शांत सौंदर्य का नवीनतम रूप प्रकट किया है। कवि के अनुसार संध्या काल का समय विभिन्न रूप रंगों में पल पल परिवर्तित होता रहता है। संध्या के समय प्रत्येक पल में एक नए आयाम की अनुभूति की जा सकती है। कवि का कथन है कि संध्या के समय जब सूर्य अस्ताचल में तिरोहित होने लगता है तो गगन मंडल में पीत रंग की आभा आच्छादित हो जाती है, जो अवसान का पूर्ण प्रतीक होता है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी यथार्थवादी प्रत्यक्षवादी कवि हैं। वे एक ऐसे पत्ते पर ध्यानमग्न होकर देखते हैं जो पतझड़ के प्रभाव से बचकर डाल की टहनी में अटका हुआ है, जो पूर्णतः शांत प्रतीत होता है। कवि का विचार है कि एक एकाकी पत्ता जो पतझड़ के प्रभाव से बचकर टहनी से अटका है, किंतु कितना शांत कितना एकाकी, कमजोर शरीर से युक्त भावी संकल्पनाओं से मुक्त थका हारा मृत तुल्य सा लटका हुआ है। कवि पुनः संकल्पना करने लगता है कि पत्ते की पूर्णतः उसके समान एकाकी जर्जर आशा से रहित उत्साह से हीन है, मानो कवि का मौन दर्पण में प्रतिबिंब है। एकाकी पत्ते की दशा अत्यंत ही विचित्र है। संध्या के समय आशित वातायन में वासनाओं में डूबी शिथिलता से आक्रांत झिलमिल करते हुए शांत भाव लिए अटका हुआ है, जिसकी दशा निसंदेह रूप से विचित्र है। न जाने वह कब तक ढुलक जाएगा, जैसे आंखों में आंसू बूंद छलकता है और पल भर में दुलक पड़ता है, जैसे संध्या के समय आकाश में कोई तारा टूटकर अतल में सदा के लिए समाहित हो जाता है। विशेषताएं कविता के अंतर्गत कवि ने बिंबात्मक रहस्य प्रस्तुत किया है। कवि ने बताया है कि मनुष्य के जीवन की संध्या काल अत्यंत विचित्र होती है। उसकी दशा एक एकाकी जर्जर पत्ते के समान होता है, जो अब गिरा या तब गिरा, यद्यपि इस अवस्था में भी वह वासना और इच्छाओं से मुक्त नहीं होने पाता। कवि ने जीवन रहस्य को बड़े ही यथार्थवादी रूप में सुंदर उपमा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कविता की भाषा शुद्ध हिंदी खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। शैली अनुक्ति के साथ वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक है। रस शांत एवं करुण है। अलंकार में अनुप्रास उत्प्रेक्षा। कविता की भाषा शुद्ध हिंदी खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। शैली अनुक्ति के साथ वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक है। रस शांत एवं करुण है। अलंकार में अनुप्रास उत्प्रेक्षा उपमा रूपक का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्तक है और काव्य गुण माधुर्य है।